आप सभी श्रोताओं को मेहताब का नमस्कार। और आज हमारे साथ ट्री मैन और ऑक्सीजन में सह ऑक्सीजन मैन हम हमारे साथ हैं। कई वर्षों से इन्होंने अपना प्रयास कर लोगों के बीच जागरूक करने का काम किया है, पौधारोपण या ऑक्सीजन संरक्षण को लेकर के इन्होंने किस तरह से जीवन मनुष्य के जीवन में परिवर्तन, जो हमें ये कहना चाहिए कि वातावरण को प्रदूषण करने में जो हम मनुष्य का भूमिका गलत होते जा रहा है, उसको बदलाव लाने के लिए इन्होंने जो प्रयास किया है वो काबिले तारीफ है और इनका कोई परिचय का मोहताज नहीं है। ये खुद ब खुद ऐसे परिवर्तनशील लोगों में जा करके जो लोग ऐसे हैं जो सुस्त पड़े हुए उनको उजागर करने का काम करते हैं। इनका बहुत बड़ा योगदान है हमारे समस्तीपुर जिला के साथ साथ अन्य जिलों में भी। आइए आपको रूबरू कराते हैं इनसे। राजेश जी, इस वॉइस मीडिया यानी मोबाइल वाणी में आपका स्वागत है।
जी हरित नमस्कार, आपके तमाम श्रोताओं को भी मैं हरित प्रणाम करता हूँ, हरित नमस्कार करता हूँ।
तो आज हम लोग जो विगत एक डेढ़ साल से कोरोना त्रासदी का जो हम लोग महामारी झेल रहे हैं, इससे कई देशों के साथ साथ भारत में भी ये प्रकोप काफी बढ़ गया है और ये पिछले बार भी बढ़ा था और इस बार भी इतनी भयावह स्थिति में हम लोगों के बीच शहर, तो जो शहर की स्थिति हुई वो हम लोगों ने देखा, अब गांव ग्राम कस्बों में भी इसकी स्थिति बहुत बुरी होते जा रही है। इस पर आपका क्या संदेश है, क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, सबसे पहले मैं तमाम श्रोताओं से कहना चाहूंगा, आप लोग COVID-19 का जो प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल का पालन करते हुए घर में रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। अभी मैं इंडिया का सिचुएशन देख रहा हूं, कई राज्य सरकार ने लॉकडाउन कर दिया, पूर्ण रूपेण लॉकडाउन कर दिया, लेकिन वहां के तंत्र और प्रशासन के द्वारा उस लॉकडाउन को फॉलो नहीं करवाया जा रहा। अभी भी गांव में लोग more than 80% लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का यूज नहीं करते हैं, लोगों में अवेयरनेस की कमी है, लोगों में जनचेतना कमी है, अभी भी लोग कोरोना के प्रति अवेयर नहीं है। तो जब तक लोगों में जनचेतना नहीं आएगी, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, मास्क का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक ऐसे ही कोरोना का प्रचार प्रसार होता रहेगा। और अब तो गांव में आ गया है, गांव में आने से क्या हो रहा है, गांव के लोग सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं करते हैं, मास्क का इस्तेमाल नहीं करते हैं, एक दूसरे से मिलना जुलना लगातार होता रहता है, अब ज्यादा विस्फोटक होने लगी है। तो तमाम श्रोताओं से कहना चाहूंगा, आप लोग भी अपने गाँव में, समाज में, मोहल्ले में, शहर में लोगों को जागरूक करें, मास्क लगाने के लिए उनसे कहें, इसी से हम कोरोना से बच सकते हैं। जब तक मास्क नहीं लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तब तक कोरोना का चेन टूट नहीं पाएगा। तो चेन को तोड़ने के लिए हमें मास्क लगाना है और कम से कम जो है 7 से 8 फुट की डिस्टेंस पर रहना है।
तो अभी ये आपकी कार्य योजना किस तरह की है और आप अभी ऑक्सीजन को लेकर
जी
और हरियाली को लेकर, क्योंकि हरियाली है तो हमारा जीवन भी हरियाली है।
बिल्कुल
और हम हरियाली नहीं, जीवन हरियाली नहीं है, वातावरण हरियाली नहीं है तो हमारा जीवन भी हरियाली नहीं है। इस संदर्भ में कोरोना को और ये वायु परिवर्तन को कैसे आप देखते हैं?
जी देखिए, कहीं न कहीं अभी जो कोरोना से जो मृत्यु दर काफी बढ़ गया है, तो इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी काफी रोल है। आज आपने देखा होगा, अभी मात्र 1% से भी कम लोग जो कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और उनको ऑक्सीजन देने के लिए, मेडिकल ऑक्सीजन देने के लिए हमारा देश की पूरा सिस्टम बिखर गया और हमारे देश को दूसरा देश आज ऑक्सीजन से मदद कर रही है। तो हमें अभी ऑक्सीजन की अहमियत समझ में आ गया है। मैं पिछले कई वर्षों से आम जनों को, देशवासियों के बीच ऑक्सीजन के प्रति जनचेतना लाने के लिए मैं सांकेतिक डेमोस्ट्रेशन कार्यक्रम चलाता हूँ, मैं हरित यात्रा निकालता हूँ, विभिन्न शहरों में जाकर, बिहार के बाहर भी जाकर, अन्य स्टेट में भी जाकर, गांव में जाकर, मोहल्ला में जाकर, चौक चौराहा पर जाकर, नुक्कड़ पर जाकर, शहरों में जाकर लोगों को ऑक्सीजन की अहमियत के बारे में पिछले कई वर्षों से चेताता आ रहा था। सांकेतिक डेमोस्ट्रेशन के दौरान मेरे पीठ पर एक गैलन हुआ करता है और उस गैलन में पौधा में रखा रहता हूँ और पौधा से ऑक्सीजन निकलती है, और मास्क के माध्यम से नाकों तक आती रहती है। एक सांकेतिक डेमो रहता है, मैं लोग चेताता हूँ इसके द्वारा, आप चेत जाओ। अभी आप नहीं चेतोगे तो आने वाले समय में शुद्ध ओटू की कमी होगी, शुद्ध ओटू की कमी होगी, हमारे पीठ पर कृत्रिम ऑक्सीजन सिलेंडर होगा और नाक में मास्क होगा। मैं लोग चेताने के लिए, जगाने के लिए लोगों में जा जाकर, मैं पागल बनकर मैं लोगों के बीच जाता हूँ, लोगों को चेताता हूँ। लेकिन देखिए, मैं तो कह रहा था आने वाला समय में होगा, लेकिन अभी आपने देखा 2021 में आ गया ये सिचुएशन। तो लोगों में जब तक जनचेतना नहीं आएगी, तब तक हमारे एनवायरमेंट बच नहीं पाएगा। आज हमारी मदर अर्थ की हम बात करें तो 33% वन होना चाहिए इंडिया को बचाने के लिए, एनवायरमेंट को बचाने के लिए। जब हम इंडिया की बात करें 24.56% वन है। अगर हम बिहार की बात करें, बिहार मात्र 7% वन, ओनली 7%। आप सोच सकते कितना चिंता का विषय है, जहां पे 33% वन होना चाहिए वहां पर 7% जंगल है। तो आप सोच सकते हैं ऑक्सीजन कितना किल्लत होगा। हमारे शुद्ध वातावरण के लिए 21% O2 होना चाहिए, जो उसका भी लेवल घट रहा है। तो पेड़ पौधा ही, सिर्फ और सिर्फ हरा पेड़ पौधा ही O2 जनरेट करती है और CO2 ग्रहण करती है। हम एक पौधा की बात करें तो पौधा से हमें ऑक्सीजन मिलती है, छाया मिलती है, लकड़ी मिलती है, तो सर्वविदित है। इसके अलावा हम बात करें, एक पौधा की बात करें तो हॉल लाइफ में पूरे जीवन काल में 42 लैक्स यानी कि 42 लाख का O2 जनरेट करती है और 38 लैक्स का CO2 ग्रहण करती है। सोच सकते हैं एक पौधा का पूरे लाइफ में 80 लाख का रोल है एनवायरमेंट कंजर्वेशन में। तो कितना एक पौधा कितना रोल प्ले करता है एनवायरमेंट कंजर्वेशन के लिए, आप सोच सकते हैं, इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। और एक मनुष्य जो है अपने हॉल लाइफ में, पूरे लाइफ में 18 पौधा जितना O2 जनरेट करती है उतना हम लोग ग्रहण करते हैं। सोच सकते हैं अगर पेड़ पौधा नहीं होगा तो हमें जीवित रहने के लिए, एक व्यक्ति को जीवित रहने के लिए अगर वही हम ऑक्सीजन डॉक्टर के यहाँ खरीदेंगे तो 15 करोड़ के समथिंग वो पैसा पे करना पड़ेगा। 15 करोड़ रुपया हमें पूरे जीवन को जीने में 15 करोड़ रुपया पे करना पड़ेगा सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। सोच सकते हैं कितना ऑक्सीजन हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो मैं पिछले कई वर्षों से ऑक्सीजन के प्रति लोग जागरूक करते आ रहा था और मैं पिछले कई दशकों से लोगों के बीच जाकर पौधरोपण करने के लिए मैं जागरूक कर रहा हूं। और इसके साथ साथ मैं खुद पहले चाहता हूं, मैं खुद करके बताता हूं, मैं अपने जन्मदिन पर मेरा जब बर्थडे होता है, लोग जहां अपना अंतिम संस्कार करने जाते हैं, शमशान घाट में मैं जाकर पौधरोपण करता हूं। जहां लोग अंतिम संस्कार होता है वहां से मैं अपने जन्मदिन में पौधरोपण करता हूं। मैं जिस किसी भी शादी समारोह में पहुंचता हूं, जन्मदिन पहुंचता हूं, मुंडन पहुंचता हूं, श्राद्धक्रम पे पहुंचता हूं, तो मैं पौधा भेंट करता हूं। खासकर शादी में बरमालक्ष में बरबधु पौधा भेंट करता हूं, मुंडन पहुंचता हूं, मुंडन पौधा भेंट करता हूं। किसी श्राद्धक्रम में पहुंचता हूं, श्राद्धक्रम में पूर्वज के सम्मान पौधा भेंट करता हूं। मेरा प्रयास है कि हर अवसर पे पौधरोपण करने का संस्कार डेवलप हो। हर अवसर पे जन्मदिन पर युवा केक काट लेते हैं, केक काटा खाया खत्म हो जाता है, कल दिन भूल जाते हैं, लाखों रुपया खर्च करते हैं। अगर वही युवा अपने बर्थडे पर एक पौधरोपण कर लेते हैं, एक पौधरोपण करने में मिनिमम 100 रुपया खर्च होगा। अगर एक पौधरोपण कर लेते हैं तो उसे हमेशा उनको O2 मिलेगी, शुद्ध प्राण वायु मिलेगी, फल मिलेगा, लकड़ी मिलेगा, छाया मिलते रहेगा। इससे हमारा एनवायरमेंट कंजर्वेशन होगा और आने वाला समय में रिवार्ड डेवलप होगा, एक कस्टम बन जाएगा। हमारा प्रयास है कि जन्मदिन पर और शादी के सालगिरह के साथ साथ तमाम मांगलिक अवसर के अवसर पर पौधरोपण करने का संस्कार विकसित हो। तो इन तमाम मुद्दा को लेकर मैं देश भर में, अपने राज्य भर में जाकर लोगों को जागरूक करते रहता हूं और लोगों को बताते रहता हूं कि कितना इम्पोर्टेंट हमारे लाइफ के लिए पौधा का। जिस तरह से आप पानी के बगैर, ऑक्सीजन के बगैर नहीं रह सकते हैं, तो इसके लिए पौधरोपण करना जरूरी है। पौधा ही हमें सिर्फ और सिर्फ O2 जनरेट करती है, इसके अलावा कुछ नहीं जो O2 जनरेट करने वाली है। तो इन तमाम मुद्दा को लेकर मैं जाता हूं। इसके साथ साथ हम लोग ग्रीन पाठशाला चलाते हैं। ग्रीन पाठशाला में बच्चों को हम लोग गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करवाते हैं और ये दुनिया का पहला ग्रीन पाठशाला BSS क्लब है जो रोसड़ा में संचालित है। इसके माध्यम से बच्चों को हम 30 किलो में पौधरोपण करवाते हैं। 30 किलो में पैसा नहीं लेते बच्चों से और कहते हैं प्रत्येक बच्चों से मैं 18 पौधरोपण करवाता हूँ यहाँ पढ़ने वाले बच्चों से। और बच्चों से कहता भी, आप जब आपका जब जन्मदिन होगा, शादी का सालगिरह होगा, तो आप भी पौधरोपण करना केक काटने के बजाय। हमारा एक प्रयास है कि पर्यावरण के प्रति लोगों में जन चेतना भरने के लिए, एक हुनकार भरने के लिए इन तमाम मुद्दा को लेकर मैं लोगों को जागरूक करता हूँ।
तो क्या लगता है आपको कि इस तरह से कार्य करने से अभी तक आपके द्वारा कितने पौधरोपण करवाए गए होंगे?
जी देखिए, हमारा जो हमारी टीम के द्वारा कुल अभी तक 110,000 से अधिक पौधरोपण किया गया है, विभिन्न गांव में जाकर, विभिन्न शहरों में जाकर, विभिन्न ओकेजन पर हम लोग पौधरोपण करते हैं। अभी हम लोग दो गांव को भी गोद ले रखे हैं, एक बेगूसराय जिला का सागी गांव है और एक आपके विभूतिपुर जिला का आलमपुर गांव है। इन दोनों गांव को हम लोग इको विलेज के रूप में डेवलप कर रहे हैं, ग्रीन विलेज के रूप में डेवलप कर रहे हैं। बेटी और बन को बचाने के लिए हर घर के दरवाजे पर बेटी और बन को बचाने के लिए बेटी के सम्मान में बेटी के नाम से हम लोग आम का पौधरोपण करते हैं। अब बेटी के नाम से इसीलिए पौधरोपण करते हैं, कल दिन हम बिटिया की शादी करते हैं तो ससुराल चली जाती है। आज जब बिटिया के नाम से पेड़ रहेगा, जब जब उनके माता पिता उस पेड़ का फल खाएंगे, छाया ग्रहण करेंगे, लकड़ी प्राप्त करेंगे, तो अपनी बिटिया को याद करते रहेंगे और इससे हमारा इन्वायरमेंट कंजर्वेशन होगा। इसीलिए मैं बिटिया के सम्मान में पौधरोपण करता हूँ। और मैं पौधरोपण करने के बाद मैं उक्त गार्जियन से कहता हूँ कि पेड़ भी आपकी एक तरह से बिटिया हो गई, जिस तरह से आप बेटी परवरिश करते हैं उसी तरह से आप इस पेड़ का भी परवरिश करेंगे। तो इन दोनों गाँव को मैं पूरे गाँव में पौधरोपण करना बिटिया के सम्मान में, बिटिया के नाम से इन तमाम प्रोजेक्ट को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। और दूसरा नंबर कि हम लोग किसी से कोई सपोर्ट नहीं लेते हैं, किसी से कोई आर्थिक मदद नहीं लेते हैं, और आज तक हम लोग किसी सरकार से भी नहीं लिया है, ना हमारा एनजीओ है, ना कोई ट्रस्ट है। हमारे पास जो सामर्थ्य है, जो पोटेंशियल है, जो कैलिबर है, जो एनर्जी है, उसी एनर्जी के साथ हम लोग काम करते हैं अपने पॉकेट मनी से। हमारा जो इनकम का जो हिस्सा, बचत का हिस्सा होता है, उन तमाम बचत को हम लोग पौधरोपण में खर्च करते हैं।
एक अंतिम सवाल आपसे कि अभी अभी कोरोना और पेड़ लगाना, जो ऑक्सीजन के बीच में, इस दोनों के बीच में महामारी जो ऑक्सीजन का हुआ है, ये अब इंसानों को किस तरह से, अब आने वाले जनरेशन को भी किस तरह से ऑक्सीजन के लिए चिंताएं बढ़ेंगे, पेड़ लगाने के लिए चिंताएं बढ़ेंगे, ये कैसे मतलब मुनासिब हो पाएगा कि जो स्थिति अभी ऑक्सीजन का हुआ है, अभी हम ढूंढ रहे हैं, खोज रहे हैं, रोड पे दौड़ रहे हैं कि हम अपने परिवार के लोगों को बचा लें, ऑक्सीजन मिल जाए, चीज पहले किए हुए उन्होंने, तो ऐसा नहीं होता, इस संदर्भ में क्या कहेंगे?
जी अभी मेरे कई फॉलोवर्स का फोन भी आया था, उनके शुभचिंतक, उनके जानने वाले लोग ऑटो कमी से चले गए दुनिया से, उनका फोन आया था कि देखिए सर, मैं आपको पहले पागल समझा करता था जिस तरह से आप पीठ पर पौधा ले घूमते थे, लेकिन अब मेरे अहमियत समझ में आई है। अब सर मैं आपके जो अनुसरण करूंगा और मैं पौधरोपण करूंगा, लोगों को जागरूक करूंगा। आपने देखा होगा, मैं भी पिछले कई दिनों से समाचार पत्रों को देखते आ रहा हूं, तो जिस तरह से कई पेशेंट ऐसे भी जिनका ऑक्सीजन लेवल 90% से कम हो गया था, उनको ऑक्सीजन मिल नहीं रही थी, तो उनके घर के लोगों के द्वारा उनको जंगल में ले जाया गया, पीपल के पेड़ के नीचे ले जाया गया, और पीपल जो कोविड पॉजिटिव हैं, उन पेशेंट को मेडिकल में ऑक्सीजन नहीं मिलने के कारण हॉस्पिटल में, तो उनको पीपल पेड़ के नीचे ले जाया गया, जंगल में ले जाया गया, तो देखा गया कि वहाँ ऑक्सीजन लेवल उनका मेंटेन था, 95+ आ गया, 90% था, 95% आ गया पीपल पेड़ के नीचे या फिर जंगल में के नीचे। तो इस तरह से काफी पेशेंट जंगल में जाकर ठीक हुए हैं और वो निगेटिव भी हो गए हैं। तो इससे धीरे धीरे लोगों में अब ये जो कोविड महामारी आया है और ऑक्सीजन जिस तरह से किल्लत हुआ, तो लोगों में निश्चित रूप से एक जनचेतना आ रही होगी, आई होगी, हमें हमारे लिए पेड़ कितना महत्वपूर्ण है। तो अब लोग धीरे धीरे इसी के प्रति अवेयर हो रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले समय में तमाम इंडियंस पौधरोपण जरूर करेंगे और अपने मांगलिक अवसर के साथ साथ अन्य अवसरों पर भी वो पौधरोपण करेंगे।
तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और हम अपने श्रोता से ये भी कहेंगे कि आप भी हमारे ट्री मैन, ऑक्सीजन मैन के द्वारा जो बात कही गई है उस पे अमल करें और आने वाले भविष्य को ये भी समझाएं, ये भी बताएं कि हमारे लिए ऑक्सीजन कितना महत्वपूर्ण है और उस महत्वपूर्ण को कैसे हम पूरा करेंगे, वो हमारे राजेश जी के द्वारा, ट्री मैन के द्वारा, ऑक्सीजन मैन के द्वारा आपको बताया गया है। फॉलो करें, खुश रहें, अपने परिवार को खुश रहें, ये भी ध्यान रखें कि कोरोना में के समय कहीं भी किसी काम को जब जरूरत पड़े तब घर से बाहर निकले, बिना मास्क के ना निकले, डिस्टेंस बना के रहें, ताकि आप सुरक्षित, आपका परिवार सुरक्षित। धन्यवाद।